नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रत्येक अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने कहा, देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। और हॉकी में FIH हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय फोरम को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था है, 10,000 से ज्यादा लेवल क्रॉसिंग गेट्स को भी इंटरलॉकिंग से जोड़ा जा चुका है। इससे ह्यूमन एरर से होने वाले हादसों की आशंका बहुत कम हुई है। साथियों, जब 2014 में हमारी सरकार आई तो करीब 9,000 फाटक ऐसे थे जो अनमैंड थे। इन्हें हटाना कोई रॉकेट साइंस नहीं था। अनमैंड क्रॉसिंग की वजह से हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन पहले की सरकारों को इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता था। हमने मिशन मोड में गत 10 वर्ष में इन अनमैंड क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया।
प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाले नशा मुक्ति केंद्र का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता BNS के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है, जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता।
श्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के बारे में कहा कि पुराने दंड कानूनों को समाप्त कर नई भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है जो प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और समय सीमा पर आधारित है।
मैं बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, सिख, जैन शरणार्थियों को वादा कर जाता हूँ कि 6 माह में आप सभी को हम नागरिकता दे देंगे। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अपने सारे अधिकार बंगाल सरकार के 8 कलेक्टरों को दे दिए हैं। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर पश्चिम बंगाल से निकालने का मैं फिर से एक बार बंगाल की जनता को वादा करना चाहता हूँ।
गृह मंत्री ने कहा कि अवैध प्रवासन कतई बर्दाश्त न करने की नीति जारी रहेगी और अवैध प्रवासियों को पहचानने, नाम हटाने और निर्वासित करने की प्रक्रिया सख्ती से लागू की जाएगी। उन्होंने दोहराया कि हर अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। उन्होंने कहा कि जनसांख्यिकी बदलाव को भी सख्ती से रोका जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी संख्या में उपस्थित कॉलेज, विश्वविद्यालय तथा कानून के विद्यार्थियों तथा अन्य नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि तीन नए कानूनों से देश व राज्य की जनता और अधिक सुरक्षित होगी। उन्होंने आगे कहा कि जुलाई 2024 से ही देश में यह कानून लागू हो गया था, परंतु विगत की टीएमसी की ममता सरकार ने इसे पूर्ण रूप से लागू होने नहीं दिया, परंतु भाजपा की सरकार आते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस कानून को पूर्ण रूप से लागू कर दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिलीगुड़ी से अशोक चौरसिया।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। रिपोर्ट।
सरकार चीनी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मंत्रालय ने पाया कि कुछ चीनी मिलों और व्यापारियों द्वारा जमाखोरी की वजह से भी चीनी की कीमतें बढ़ी हैं। सरकार ने 1 अगस्त से 30 नवंबर तक पूरे देश में चीनी व्यापारियों के लिए अधिकतम 400 टन का स्टॉक रखने की सीमा तय की है। इसके अलावा थोक उपभोक्ताओं को 1 सितंबर से 15 दिन की खपत से ज्यादा चीनी का स्टॉक रखने की इजाजत नहीं होगी। सरकार द्वारा राज्यों और चीनी मिलों को 15 अक्टूबर से पेराई शुरू करने की सलाह दी गई है। इससे अक्टूबर में चीनी का उत्पादन सामान्य 3 से 4 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 10 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा होने की उम्मीद है, जिससे त्योहारों के मौसम में चीनी की उपलब्धता और बेहतर होगी। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि वो स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना सही नहीं है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना MPMS का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को मंजूरी दी थी। मंत्रालय ने योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। योजना का उद्देश्य उत्पादन का स्तर बढ़ाकर मोबाइल विनिर्माण की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत और व्यापक बनाते हुए घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को सशक्त बनाकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में देश की स्थिति मजबूत करना है। इस योजना से भारतीय मोबाइल ब्रांड को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर सृजित करने में भी मदद मिलेगी। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि ये योजना भारतीय स्वामित्व वाले मोबाइल ब्रांड, बौद्धिक संपदा और डिजाइन के विकास को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगी।
भारत में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट का इकोसिस्टम बहुत वाइड स्प्रेड हो गया है। MSME और फाइनल प्रोडक्ट्स के बीच में पूरा एक वैल्यू चेन का रिलेशन है। उस तरीके से ये चीज डेवलप हो रही है। PLI केवल एक प्योरली प्रोडक्शन बेस्ड था। इसमें डोमेस्टिक वैल्यू के लिए अलग से, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन के लिए अलग से रखा गया है, और साथ ही साथ इंडियन ब्रांड को डेवलप करने के लिए, इंडियन IP को डेवलप करने के लिए, इंडियन डिजाइन को डेवलप करने के लिए अलग से प्रोविजन रखे गए।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि योजना की अवधि के दौरान देश में मोबाइल फोन का संचयी उत्पादन करीब 39 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। सरकार ने फिर कहा है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। श्री जायसवाल ने विदेशी ध्वज वाले 2 जहाजों से संबंधित घटना के बारे में कहा कि सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है।
2 ships which are foreign flag. 2 जहाज हैं, दोनों पर विदेशी झंडे लगे हैं। उन पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वे सभी सुरक्षित हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में संबंधित अधिकारियों से संपर्क में है।
We are in touch with the authorities that are concerned in this.
विदेश मंत्रालय की सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन की फिलिस्तीन यात्रा के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि यात्रा के दौरान उन्होंने फिलिस्तीन के विकास साझीदार के रूप में भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रवक्ता ने बताया कि सुश्री रंगनाथन ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए जीवन रक्षक दवाओं की एक खेप भी फिलिस्तीन सरकार को सौंपी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर कड़ी नजर रखने के भी निर्देश दिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा उन्नत बनाने का अनूठा अवसर है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग 12 अरब डॉलर का है। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इन प्रस्तावों में सूचना प्रौद्योगिकी, एआई, संचार, विनिर्माण, औषधि, डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब कुछ खेल खबरें। एफआईएच हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज अम्स्टरडेम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले कल भारत ने पूल डी के अपने अंतिम मैच में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलकर दूसरे दौर में प्रवेश किया था। भारतीय महिला पहलवान काजल ढोचक ने लगातार दूसरी बार अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में काजल ने फाइनल में चीन की जिंगरू सून को 7-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। 72 किलोग्राम वर्ग में भारत की तनु शर्मा और 62 किलोग्राम वर्ग में सविता ने रजत पदक अपने नाम किया। 68 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक के लिए फाइनल में भारत की मानसी लाथेर का मुकाबला चीन की चेंग लिंग से होगा और 59 किलोग्राम वर्ग के रैपिचेस राउंड में कोमल स्पेन की रोजा मोलिना के साथ खेलेंगी। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांग शू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इस जीत के साथ इस जोड़ी ने भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर दिया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित भारत के उत्तर पूर्वी भागों में भी इस महीने की 24 तारीख तक तेज बारिश की आशंका है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
सेंसेक्स 3 अंक की बढ़त के साथ 77,541 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 20 अंक की तेजी दर्ज करता हुआ 24,252 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में लगभग सपाट रहते हुए 95.71 रुपए पर बंद हुआ।
और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रत्येक अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने कहा, देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के आवंटन के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। और हॉकी में FIH हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।